ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। साइप्रस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने व्यापार पर आयोजित विचार विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 23 वर्ष में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा और व्यापार जगत से चर्चा दर्शाती है कि साइप्रस से आर्थिक संबंध भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साइप्रस लंबे समय से भरोसेमंद साझेदार रहा है। भारत में साइप्रस से महत्वपूर्ण निवेश होता है और अनेक भारतीय कंपनियां उसे यूरोप का गेटवे मानते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार 15 करोड़ डॉलर का है, लेकिन वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है।
साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार 150 मिलियन डॉलर पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समुद्री और बंदरगाह विकास, पोत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है।
मैरिटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उसका नया ऑर्डर दिया है।
प्रधानमंत्री ने बुनियादी सुधारों के जरिए भारत में आ रहे बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के तहत माल और सेवा कर GST लागू किया गया है, कॉरपोरेट कर दरों को तर्कसंगत बनाया गया है और अनेक पुराने विधान हटाए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना की अधिसूचना आज राजपत्र में जारी की जाएगी। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और पहली बार इसमें जाति गणना भी शामिल होगी। गुजरात के अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण का कार्य जारी है। इसके लिए मृतकों के रिश्तेदारों से अब तक कुल 250 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 62 DNA का मिलान हो चुका है और 35 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी का भी DNA मिलान हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच हादसे की जांच कर रहे अधिकारियों ने कल कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स के मिलने की पुष्टि की। ये बॉक्स दुर्घटना के संभावित कारण की पहचान करने में मदद करेगा। महाराष्ट्र में पुणे के निकट मावल तालुका में कल इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया। इसमें लगभग 20 से 25 पर्यटकों के नदी में डूबने की आशंका है। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आज पटना में जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास पर पहली परामर्श कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यशाला में वरिष्ठ टेक्नोक्रेट, विषय विशेषज्ञ और राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। इस सत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर 11 वर्षों के कार्गो विकास पर बल दिया जाएगा। तेहरान में भारतीय दूतावास ईरान में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दूतावास की मदद से विद्यार्थियों को ईरान में अधिक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, साथ ही अन्य व्यवहारिक विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए दूतावास सामुदायिक नेताओं के भी संपर्क में है। इसराइल में भारतीय दूतावास ने पश्चिम एशिया में तनाव को देखते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार तेल अवीव में भारतीय दूतावास भारतवंशियों के लगातार संपर्क में है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी और पर्यटक शामिल हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आपात संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर है 9725475201 और 9725432783 92। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।